बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सविता दीदी जी, तो आप सभी एक हाथ हिला करके दीदी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सविता दीदी जी हम सभी के बीच में पहुंच गए थे, आप सभी रिफ्रेश होने गए हुए थे, तो रोज आप इंतजार कर रहे हो या दीदी जी आपका इंतजार कर रहे थे? अच्छा दीदी जी, आप बचपन से ही ज्ञान में हैं, बाबा के ज्ञान में आप बचपन से ही हैं। आपने अपना जीवन यज्ञ में 1989 में समर्पित किया। 10 वर्ष तक आपने ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में अपनी सेवाएं दी, आप डॉक्टर हैं। दादी जी के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आप बड़ी दादी जी प्रकाशमणि दादी जी के साथ आप हमेशा उनके अंग संग रहे हैं। आप वर्तमान समय में महिला विंग की मधुबन हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आपने कई अमेरिका और इंग्लैंड कई देश विदेश में भी बहुत सारी सेवाएं की हैं। अभी भी दीदी जगह जगह आते जाते रहते हैं सेवाएं करने के लिए, मधुबन में भी और बाहर भी। दीदी जी की विशेषता है, बाबा कहते ना डॉक्टर बाहर तो डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, पर यहाँ पे डबल डॉक्टर होते हैं। तो दीदी जी की विशेषता है कि सुप्रीम सर्जन के रूहानी हॉस्पिटल में, सुप्रीम सर्जन के रूहानी हॉस्पिटल में आप डबल डॉक्टर डबल इलाज करते हो, दवा से तन का और दुआ से मन का, और रूहानी मुस्कान से सभी आत्माओं के दर्द हर लेते हो। दवा से तन का तो दुआ से मन का, और अपनी रूहानी मुस्कान से सभी आत्माओं के दर्द हर लेते हो। इसलिए आप कभी भी दीदी जी से मिलेंगे हमेशा स्माइली। तो एक बार फिर से दीदी जी का स्वागत करेंगे। और आज का बहुत बहुत सुंदर विषय है जो मीठे बाबा के अंतिम महावाक्य थे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो इस टॉपिक पे हम दीदी जी से सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। यहाँ 3 दिनों से आप मधुबन बाबा की वरदान भूमि में निवास कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इस समय तो ये तीनों स्थिति का अनुभव आप कर ही रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ अपने आप ही बाबा की मदद से, थोड़ी सी हिम्मत हम करते हैं, बाबा की मदद मिलती है और जो स्थिति बनाना चाहें वो बन जाती है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो वहां जाके ही करना है। तो बाबा ने जो अपनी स्थिति बनाई, जो बाबा की कर्मातीत स्थिति थी, ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति थी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, यही स्थिति हम बच्चों को भी बनानी है। जो भी गीत सुना ना कि बाबा समान हमें बनना है, बाबा को ही हमें फॉलो करना है। तो अशरीरी विदेही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति के लिए तो बाबा हमें रोज मुरली में अंडरलाइन कराते हैं। कई बार बाबा कहते हैं ये ही पहला पाठ है तो यही हमारा अंतिम पाठ है। सबसे पहले हम यही पाठ सीखते हैं, लेकिन इसी पाठ में सबसे ज्यादा कच्चे होते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार इतने पक्के हैं कि घड़ी घड़ी में हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कितनी देर याद रहता है, क्लास में बैठे मुरली सुनी, थोड़ा कोशिश करते हैं, योग में बैठे थोड़ा कोशिश करते हैं, फिर जैसे ही कर्म कारोबार में आए कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन कर्म कॉन्शियस जरूर होते हैं। जो काम कर रहे होते हैं फिर उसी में ही बुद्धि बहुत रहती है, तो बाबा को भूल जाते हैं, स्वयं को भी भूल जाते हैं, जिसको बाबा कहता है स्मृति से विस्मृति में आ जाते हैं। बाद में कभी शाम को जब योग का टाइम आता है तब याद आता है कि सारा दिन तो याद थी नहीं, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया। जो हम करते हैं ना बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, कि हमारी जो याद की लिंक है वो निरंतर बनी रहे। और मुझे याद है दादी जी का मास चल रहा है ना अभी, अब कल ही हमने दादी जी का स्मृति दिवस मनाया, तो एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो बाबा ने कहा था कि हर घंटे में कम से कम 2 से 5 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास अभी से चाहिए। और बाबा ने कहा था बहुत काल का अभ्यास वही अंत में आपको सहज देह से न्यारा बनाएगा, नहीं तो ये देह रूपी वस्त्र टाइट है ना हमारा, इतना जल्दी हम इसको उतार नहीं पाते हैं। तो 1 घंटे में 1 बार जो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ वो उस समय से शुरू हुआ। अभी हम सुनते हैं ना मधुबन में हर घंटे में गीत बजता है, तो वो उस स्थिति के अभ्यास के लिए कि हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास थोड़ा समय के लिए करें। तो मैं कौन हूं के साथ साथ मैं कौन हूं, फिर मैं कौन सी आत्मा हूं, हाँ मेरा कौन, वो तो दादी जी का मंत्र है लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, वो समान भी हमें याद रहना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। फिर और भी बाबा ने हमें जो स्मृतियां दिलाई, मैं ही देवात्मा हूं, मैं ही पवित्र आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं, कितने हैं, स्वमान की लंबी लिस्ट है। जितने टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, शायद दुनिया में कितने भी बड़े VVIP हों उतने टाइटल उनके भी नहीं होते हैं। तो वो स्मृति भी हमें रहे और हम हैं। कई बार हम सुनते हैं बाबा से तो खुश जरूर होते हैं कि बाबा ने हमारे लिए ऐसा कहा, अच्छा सचमुच क्या हम ऐसे हैं, तो थोड़ा सा कई बार स्वीकार करने में हमें मुश्किल होती है, हमें लगता है कि इतने पवित्र तो हम नहीं हैं, क्या हम ही सचमुच देवात्मा बनने वाले हैं। तो हम भूल गए इस सृष्टि चक्र में जन्म पुनर्जन्म लेते हुए जब हम माया के संग में आ गए तो हम अपने आप को भूल गए। एक शास्त्रों में उसके ऊपर एक कहानी आती है बहुत अच्छी कि एक बार एक शेर का छोटा बच्चा वो अपनी माँ से अलग हो गया। जन्म ही हुआ था, एक दो दिन हुए थे, तो माँ जंगल में शिकार करने गई, वो बच्चा भटक गया, तो वो भेड़ों के झुंड के पीछे पीछे चलने लगा। एक भेड़ों का झुंड जा रहा था तो जो मुख्य भेड़ थी, मुखिया भेड़ थी, जब उसने वो शेर के छोटे बच्चे को देखा तो वो भी समझ नहीं पाई कि ये शेर का बच्चा है या भेड़ का बच्चा है। तो वो जो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में चला गया तो उनके साथ साथ ही चलता रहा, पीछे पीछे जैसे भेड़ें चलती हैं। तो घास खाना सीख लिया उसने, भेड़ों जैसा मिमियाना सीख लिया, क्योंकि जिसके बीच में रहेगा वैसे ही सीखेगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो और भेड़ों को लगा कि ये तो हमसे कुछ अलग है, क्योंकि अब शेर की शेप तो भेड़ों से अलग होती है, तो उसका मजाक बनाते थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा क्या मुझ में अलग है, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो खुद को तो वो नहीं देख सकता था, तो उसको तो नहीं मालूम था, वो तो अपने को भेड़ ही समझता था। लेकिन संस्कार शेर के ही मर्ज होने लगे ना थोड़े थोड़े, तो उसको भेड़ों के पीछे पीछे चलना पसंद नहीं आता था, घास खाना भी पसंद नहीं आता था, लेकिन अब यहीं रहना है। और जो मुखिया भेड़ थी वो समझाती भी थी कि आपको कहीं अकेले नहीं जाना है, क्योंकि जंगल में शेर होता है और शेर भेड़ों को खा जाता है। तो ये भी उसको डर लगता था कि जो शेर है वो भेड़ों को खा जाता है, तो कहीं निकल के नहीं जाना है यहाँ से। तो बड़ी दुविधा की स्थिति थी उसके लिए कि क्या करें, ये पसंद भी नहीं आता है और इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, सब मेरा मजाक बनाते हैं। थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगा वो। फिर आखिर एक दिन उसने तय कर लिया कि भले ही मुझे मर जाना पड़े लेकिन मुझे यहां से चले जाना है, यहां नहीं रह सकता मैं, इन भेड़ों के बीच में नहीं रह सकता। तो निकल गया वहां से और जंगल में चला गया। अब प्यास लग रही थी, जंगल में काफी घूमा, प्यास लगने लगी तो ढूंढा पानी, तो एक जगह पानी मिला उसको, थोड़ा छोटा सा तालाब था, पानी पीने लगा। पानी पी के जैसे ही सिर उठाया तो देखा कि पास में कोई दूसरा बड़ा जानवर खड़ा है। तो जैसा उसने अपनी जो मुखिया भेड़ से वर्णन सुना था शेर का, बिल्कुल वैसा ही वो उसको दिखाई दिया। तो घबरा गया कि सचमुच शेर आ गया जंगल में और ये मुझे खा जाएगा अभी। पर देखा वो तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए देख रहा है उसको, सोचा कि ये तो बस अभी खाया कि खाया, लेकिन आश्चर्य भी हो रहा था कि ये ऐसे देख रहा है। तो उसने नहीं खाया तो उसने उसको पूछा, आगे से पूछा कि तुम शेर हो? उसने कहा हाँ शेर हूँ, तुम मुझे खा जाओगे? तो उसने कहा मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, तुम भी शेर हो? तो उसने कहा नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम शेर हो, किसने कहा तुम भेड़ हो? उसने कहा नहीं मुझे पता है मैं भेड़ हूँ, क्योंकि बचपन से उसने वही समझा था अपने आप को कि मैं भेड़ हूँ। तो उसने उसको कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम भी शेर हो, तो शेर शेर को थोड़ी खाएगा, लेकिन वो माना नहीं, मैं भेड़ हूँ। फिर उसने दहाड़ के बताया उसको कि तुम अपनी आवाज निकालो, तो उसने तो बकरी की, वो भेड़ की आवाज निकाली। तो वो हंसने लगा, उसने कहा कि ये तुम क्या आवाज निकाल रहे हो, शेर ऐसे थोड़ी आवाज निकालता है। उसने कहा लेकिन मैं भेड़ हूँ, मैं शेर हूँ ही नहीं। फिर उसने समझाने के लिए उसको वो तालाब के पास लेके गया और उसको उसका मुंह दिखाया और कहा मेरा मुंह देखो, तो दोनों एक जैसे हैं। तो उसने कहा है तो एक जैसे, लेकिन मैं तो भेड़ हूँ। तो वो तंग हो गया उसकी भेड़ भेड़ सुन के, तो उसने कहा तुम आओ मेरे साथ। वो लेके गया उसके उसको अपने साथ और उसको सिखाना शुरू किया, क्योंकि वो समझ गया कि ये जो है ये अपने आप को भूल चुका है, तो इसको भेड़ के उसमें लाना, भेड़ से शेर में के उसमें लाना पड़ेगा। तो फिर बिठाया उसने और उसको समझाना शुरू किया कि शेर कैसे खाता है, शेर कैसे चलता है, शेर का व्यवहार कैसे होता है, शेर जंगल का राजा होता है। फिर उसको कहा कि तुम रोज बैठ करके सोचो यहाँ पर कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, और मुझे शेर जैसे ही चलना है, शेर जैसे ही आवाज निकालनी है, शेर जैसे ही मुझे शिकार करना है, मांस खाना है, ये घास नहीं खाना है। काफी समय लगा उसको वापस अपने भेड़ से शेर के रूप में आने में। अब ऐसा नहीं कि वो शेर नहीं था, था तो वो शेर, लेकिन भटक गया, भेड़ों के झुंड में चला गया, तो अपने असली स्वभाव को, अपने शेर के स्वभाव को वो भूल गया। तो हम आत्माओं की भी यही स्थिति हुई कि जब हम माया के चक्र में आ गए द्वापर युग में, तो ऐसे नहीं कि हम आत्मा नहीं हैं, और ऐसे भी नहीं कि हम देवता नहीं थे या हम पवित्र नहीं थे, हम श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन माया के प्रभाव में आकर के हम अपने आप को पूरी तरह से भूल गए। अब बाबा हमें बार बार कहते हैं, जैसे वो शेर ने उसको बार बार कहा, तो बार बार कहाँ अटका हुआ था वो, मैं भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ। तो हम भी बार बार बाबा हमें कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, हम कहाँ अटक जाते हैं। फिर वो शेर का स्वभाव याद दिलाने की कोशिश की तो भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो इतना दूर निकल चुका है अपने स्वभाव से कि अपने ओरिजिनल स्वभाव को बिल्कुल ही भूल गया। तो अपने स्वरूप में आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, जो कि मेरा ही था। तो हमें भी अपने स्वरूप में आने के लिए रोज ये पुरुषार्थ बाबा कराते हैं कि हमें बार 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 स्मृति में लाना है। योग में बैठते हैं हम, कौन सी स्मृति पक्की कर रहे हैं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं वही पवित्र आत्मा हूँ, वो मेरे संस्कार होंगे तब मेरा जीवन कैसा होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो हमें वो स्मृति में ज्यादा रखना है कि मैं फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूँ, अव्यक्त स्थिति में जाने वाली आत्मा हूँ, और फिर भविष्य में मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। तो जब हम अपने गुणों के स्वरूप में रहते हैं ना, आत्माभिमान गुणों की जननी है और देह अभिमान विकारों की जड़ है, यही कहते हैं हम, तो हमारा वो स्वरूप दूसरों को भी अनुभव होता है कि ये आत्माएं शांत स्वरूप हैं, इनसे मिलते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। आपको कई लोग कहते भी होंगे जब हम अपने स्वरूप में होते हैं तो सचमुच जो हमारे संपर्क में आते हैं वो फील करते हैं कि इनसे बात करते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन की कोई भी अशांति है, दुख है, जैसे कि वो खत्म हो गया। तो हमारा वो व्यवहार दूसरों को वैसा ही अनुभव कराता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की अशांति से अशांत हो जाते हैं, खुद शांत स्वरूप की स्थिति में होते हैं लेकिन किसी दूसरे को किसी कारण से समस्या है, परेशानी है, वो अशांत और दुखी है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। पर यदि मेरी शांत स्वरूप की स्थिति है तो मेरी शांत स्वरूप की स्थिति उसकी अशांति को खत्म कर दे, ना कि उसकी अशांति से मैं खुद अशांत हो जाऊं, है ना। इसको हम कहेंगे कि वो हमारा स्वरूप सत्य स्वरूप है। फिर कई बार जब हम देह विमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्वरूप में होते हैं, तब हम जो पवित्रता के वाइब्रेशंस हमारे द्वारा अन्य आत्माओं तक पहुंचने चाहिए वो पहुंचा पाते हैं। आत्मा अपने स्वभाव में पवित्र है तो वो रूहानियत का अनुभव या पवित्रता की झलक फलक हमारे चेहरे पर होती है और वो दूसरे भी अनुभव करते हैं, और दूसरों के नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम कलयुग में रहते हैं, तमोगुणी प्रभाव में रहते हैं, कई बार हम बाहर निकलते हैं, कई ऐसे दृश्य आ जाते हैं हमारे सामने जो हम नहीं देखना चाहते, या अगर उसके प्रभाव में आ गए तो फिर हमारी पवित्रता पर उसका असर होता है। लेकिन यदि मेरी आत्मिक स्थिति है तो मेरी पवित्रता का प्रभाव किसी की अपवित्रता की वृत्ति को भी चेंज कर देगा। बाबा कहता है कि हम विश्व परिवर्तक है ना, तो हम विश्व परिवर्तक हैं, तो हमारी पवित्रता की शक्ति इतनी पावरफुल हो कि हम उनके वाइब्रेशंस को चेंज कर पाए, ना कि उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। अब ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर गृहस्थ में भी कई हमें संपर्क व्यवहार निभाने होते हैं, तो ऐसी आत्माओं के संपर्क में तो हम आते ही हैं। तो जहां देह अभिमान होगा, दैहिक दृष्टि होगी, तो उनकी किन्हीं बातों से हम प्रभावित हो जाएंगे। हर आत्मा में कोई ना कोई ऐसी विशेषता तो होती ही है। तो वो पवित्रता की स्थिति हमारी हम बनाए रख पाते हैं जब हमारी आत्मिक स्थिति, जैसे बाबा कहता है भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रहती है हमारी। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं भाई बहन भी नहीं, लेकिन स्थिति कैसी हो, भाई भाई कि स्त्री शरीर में भी जिसको देख रहे हैं उसको भी आत्मा ही देख रहे हैं, मस्तक में ही देख रहे हैं और आत्मा रूप में हम भाई भाई है। तो ये तपस्या है, यही हमारी साधना है कि जो दिखाई नहीं देता है उसको ही मुझे देखना है। शरीर तो दिखाई दे ही रहा है ना, तो शरीर पर तो सीधी नजर जाती ही है, तो सीधा हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन आत्मा जो नहीं दिखाई दे रही उससे देख करके उस स्थिति स्मृति में हमें रहना है। और जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास लगभग निरंतर होता है, तब योग में बैठते ही हमारी पावरफुल स्थिति होती है, यानी एक सेकंड में हम बाबा के पास पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो, यही श्रीमत है। लेकिन देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलने में हमें टाइम लग जाता है। योग में बैठते हैं, अगर सारा दिन देह अभिमान की ही प्रवृत्ति रही तो बैठते ही क्या बातें याद आने लगती हैं, जो कुछ प्रभाव मेरे मन पर पड़ गए, इसने ये कहा, इसने ये किया, कुछ 10 मिनट 15 मिनट वही मन में चलता रहेगा, उसको समेटने में टाइम लगता है, उस आत्मिक स्थिति में आने में कितना समय लग जाता है। और जब तक मेरी पावरफुल स्टेज बने योग में, तब तक योग का टाइम पूरा हो जाता है। तो ज्यादातर हम साधारण योग करते हैं, ऐसे नहीं ये योग नहीं है, हम बैठे योग में योग कर रहे हैं, बाबा से रूढ़ियान भी करते हैं, बाबा से रूढ़ियान में भी कई बार फिर दूसरों की ही बातें ज्यादा करते हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई, इसे कैसे ठीक करना है, बाबा कैसे मुझे इसमें मदद करे, है ना। तो इसमें ही अगर हम रह जाएंगे तो जो हमारा ज्वालामुखी स्थिति का योग होता है, जिसे बाबा कहता है लगन में मगन हो जाना, योग अग्नि जिसमें हमारे विकर्म विनाश होते हैं, वो नहीं हो पाते। और अगर विकर्म विनाश नहीं होते तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होते। अगर योग अग्नि का रूप नहीं लेगा तो पुराने जो हमारे हैं संस्कार स्वभाव बने हुए हैं, उसके जो प्रभाव हैं वो समाप्त नहीं होते। तो हम कितने सालों से योग कर रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से, पता चलता है संस्कार थोड़ा तो दब जाते हैं, थोड़ा टेंशन देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा दब जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वही संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कई बार दूसरे भी इसको नोट करते हैं कि इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं फिर भी, तो फिर कैसा योग करना है, ऐसा योग करना है। तो वो स्थिति तब बनेगी जब हमारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास पर अटेंशन होगा। फिर एक सेकंड में हम योग की एकाग्रता की स्थिति में कि एक बाप दूसरा ना कोई, परम धाम में जो बीज रूप स्थिति का हम अनुभव करते हैं, और वो आत्मा की सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न स्थिति है। परम धाम में हमारा अनादि स्वरूप है, अनादि स्वरूप में हम संपूर्ण पवित्र हैं। तो जब वो पावरफुल स्थिति का हम कुछ मिनट के लिए भी अनुभव कर लेते हैं, बाबा कहते हैं कि वो अनुभव जो है, उस स्थिति का अनुभव हमारे कई जन्मों के विकर्मों को विनाश करने वाला होता है। उसके बाद हम वो पावनता की स्थिति को अनुभव करते हैं। फिर अशरीरी स्थिति हमारे कर्म भोग को भी कर्म योग से सूली से कांटा बनाने की शक्ति रखती है। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो, कई रूप से कर्म भोग हमारे सामने आते हैं, चाहे वो तन की बीमारी के रूप में आए, चाहे वो स्वभाव संस्कार के टकराव के रूप में आए, चाहे और भी परिस्थितियों के रूप में, विघ्नों के रूप में, कई बार हमारे सामने कर्म भोग हम सबको चुकतू करना ही है। लेकिन हम कैसे चुकतू करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर अशरीरी विदेही स्थिति है, आएगा कर्म भोग हमारे सामने, लेकिन ऐसे लगेगा आया और गया, जैसे मक्खन से बाल निकलता है। बाबा कई बार कहते हैं कि विघन विघन अनुभव नहीं होता है, जैसे उड़ती कला के द्वारा, जैसे हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, तो नीचे कितने भी पहाड़ नदियां हैं वो उसके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अगर हमारे मन की स्थिति भी ऊंची है, उस ऊंची स्थिति के द्वारा वो विघ्न हमें विघ्न लगते नहीं, इसे ही बाबा उड़ती कला कहते हैं कि उड़ती कला के द्वारा हम सहज उसे पार कर जाते हैं। तो कईयों के ऐसे अनुभव अपने जीवन के होते हैं कि मानो दर्द भी हो रहा है और उस समय हम देह से न्यारे हो जाते हैं, तो वो दर्द की फीलिंग ही खत्म हो जाती है। जैसे दर्द खत्म करने के लिए डॉक्टर गोली इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। तो वो अशरीरी स्थिति का अनुभव भी इंजेक्शन का काम करता है कि कैसा भी दर्द हो रहा हो, आप थोड़े समय के लिए देह से न्यारे हो जाओ। बड़ी दादी जी को हमने देखा बहुत नजदीक से, और हम देखते थे कि कभी भी दादी को एक दो प्रकार के दर्द ऐसे होते थे, कभी कभी उठते थे तो बहुत तेज होते थे दादी को वो दर्द होते थे जब, लेकिन कभी भी दादी को हमने कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। बहुत सहज भाव से कहेगी कि हाँ ऐसा हो रहा है, इसके लिए जो दवाई है या कुछ उनको लगा के देना है, कुछ भी मरहम वगैरह वो, और बस दादी अपनी स्थिति में रहती थी। नहीं तो कईयों को हम देखते हैं थोड़ा सर दर्द होगा, 10 बार बोलेंगे सिर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और वर्णन करते हैं तो क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। बीमारी कॉन्शियस होंगे तो बीमारी को हम वृद्धि में लाते हैं। अगर हम बार बार उस बीमारी का वर्णन करते हैं तो बीमारी वृद्धि को पाती है। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस हो गए, बाबा यही कहता है कि उस रूहानी स्थिति में बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं। जितना दवा काम करती है उतना बाबा की दुआएं भी काम करती हैं, जो दवा और दुआ की बात है। तो ये हम अपने बड़ों को हमेशा देखते हैं, दादी जानकी को भी हमने देखा कई बार। कैसे भी बीमारी आती है, दादी अपनी विल पावर से उस बीमारी पर विजय पा लेती हैं। तो वो विल पावर हमारी उस स्थिति में होती है जितना हम इस देह से न्यारे हो जाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं हम कैसे बनाएं इसको, तो हमने देखा ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा ने कैसे अभ्यास किया शरीरी स्थिति का। लास्ट के दिनों का बताते हैं कि बाबा से जो भी मिलते थे, जो दादियां अनुभव सुनाती हैं कि बाबा से दृष्टि मिलते ही वो जैसे खुद भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करने लगते थे। बाबा की दृष्टि ही अशरीरी बनाने वाली होती थी। तो लास्ट दिनों में ऐसा फील होता था कि जैसे बाबा है या नहीं है। एक सेकंड पहले सब कुछ सुन रहे हैं, फिर दूसरे सेकंड ऐसा लगता है जैसे इस देह से बिल्कुल न्यारे हैं। तो जब चाहे कर्मेंद्रियों का आधार लिया और जब चाहे कर्मेंद्रियों से न्यारे हो गए। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं अपने आप को इस देह में मेहमान समझो। तो मेहमान तो सदा नहीं रहता है, मेहमान तो किसी स्थान पर आता है तो उसे जाना ही है। तो हमें भी पता है इस देह में हम मेहमान हैं, तो थोड़ा समय के लिए आत्मा यहाँ है, हमारा असली घर तो वहां है। तो कर्मेंद्रियों को इस तरह से हमें प्रयोग करना है। फिर बाबा ने ये तन मुझे सेवा के लिए दिया है। जो संगम युग में हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, कहते हैं ना भगवान को, भक्ति में तो कहते थे तो मानते नहीं थे, सिर्फ कह करके आ जाते थे, लेकिन ज्ञान में तो हम कहते हैं बाबा को कि तन मन धन सब कुछ तेरा उसे अर्पण किया है हमने, तो तन अब बाबा ने मुझे ये सेवा अर्थ दिया है, ये तन भी मेरा तो नहीं है बाबा का है। तो इस स्मृति में जब हम रहते हैं तभी भी हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव करना, देह से न्यारा होना सहज हो जाता है। तो इन विधियों के द्वारा हम उसे निरंतर बनाने की कोशिश करें जो हमारी आत्मभिमानी स्थिति है। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं निर्विकारी बनना भी हमारे लिए सहज होता है। जैसे बताया कि आत्मभिमान वो ही गुणों का विकास करता है, और जब गुणों और शक्तियों का विकास होता है तो विकार अपने आप हमसे पीछा छोड़ने लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके मोटे रूप तो हम ब्राह्मण बनते हैं तब से ही हम इस पर विजयी बनने लगते हैं। तो मोटे रूप में इन विकारों को जीत लिया है, लेकिन इनके जो सूक्ष्म रूप हैं, अंश वंश जिसको बाबा कहता है, उसके लिए परखने की शक्ति चाहिए। ये माया के रॉयल रूप हैं, और कई बार इन रॉयल रूपों से हम धोखा खा जाते हैं, और कई बार फिर वो अंश वंश बन जाता है, और वंश से कई बार विकार भी फिर प्रकट हो जाता है। तो काम विकार, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हम सब बाबा के बच्चे, और उसमें शायद सबसे मुश्किल विकार दुनिया में लोग समझते हैं, इसे असंभव समझते हैं, लेकिन उसे हम सहज संभव बना लेते हैं। लगा किसी को मुश्किल? बाबा ने हमें कहा, हमने स्वीकार किया कि यही मेरा स्वरूप है, पवित्रता ही मेरा निजी स्वभाव है। अपने स्वरूप की स्मृति आई और ये स्मृति आई कि एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक हम पवित्र रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं। वो हिम्मत आई और बाबा की मदद मिली, और हम सब प्रवृत्ति में रहते हुए भी, जिसे बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि सन्यासी भी जिसे असंभव समझते हैं उसको हमने संभव कर लिया। लेकिन इसके सूक्ष्म रूप कौन से हैं? जब हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाना, प्रभावित होना तो एक्स्ट्रा स्नेह में आ जाते हैं। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, कोई गुण है, या किसी से हमें सहयोग मिलता है, किसी से हमें विशेष स्नेह मिलता है। हम मुश्किल में हैं तो हम आपस में परिवार में रहते हैं तो एक दो को जरूर सहयोग देते हैं, अपने दिल की बातें कर लेते हैं। अब दो चार बार हमने अपनी मुश्किलें किसी को कही, उसने हमें मदद की, तो थोड़ा झुकाव हो जाता है उसकी तरफ, फिर वो हमारा सहारा बनने लगता है, और जब हम उसे अपना सहारा बनाते हैं तो फिर लगाव होने लगता है। कैसे स्टेप बाय स्टेप वो काम विकार का फिर रूप लेता है और लगाव में आ जाते हैं, तो फिर बुद्धि उस आत्मा से ज्यादा लगती है। बाबा से लगने की बजाय ज्यादा याद किसकी आती है? ये निशानी है लगाव की, कि किसी भी आत्मा से मेरा लगाव हो गया। वो कोई भी हो सकता है, हमारे अलौकिक परिवार में भी हो सकता है, केवल लौकिक में हो ऐसा जरूरी नहीं है। लौकिक के मोह तो फिर भी हम छोड़ने का प्रयास करते हैं, कई बार लौकिक परिवार वालों से हमें विघन आते हैं तो बहुत जल्दी वो उनके प्रति जो लगाव झुकाव मोह होता है वो हमारा छूट जाता है। लेकिन अलौकिक परिवार तो हमारा मीठा परिवार है ना, स्नेही परिवार है, तो यहाँ कोई ना कोई आत्मा से फिर हम ज्यादा फैमिलियरिटी में आते हैं। पहले फैमिलियरिटी समझते हैं ना, अपनापन, ये मुझे ज्यादा अपने लगते हैं। बाबा कहता है न्यारे होकर प्यारे बनो, ये सही है। ज्ञान युक्त प्यार क्या है? न्यारे होकर के प्यारे बनना। आधार जीवन का बाबा ही है। स्नेही बने हैं तो सबके स्नेही हैं, सहयोगी हैं तो सबके सहयोगी हैं, कोई एक विशेष आत्मा के हैं ऐसा नहीं। तो ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। अगर योग में कोई आत्मा मेरी बुद्धि को खींचती है, बाबा की बजाय उसकी याद मुझे नीचे ले आती है, तो इसका मतलब लगाव का अंश है और उस पर हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है कि किसी भी आत्मा से एक्स्ट्रा का अंश न रहे। बाबा कहता है शुभ भावना शुभ कामना रखो, विशेषताएं देखो, विशेषताओं की खुशबू लो, उन विशेषताओं को भले अपनाओ अपने जीवन में कि ये विशेषता इस आत्मा में है, ये गुण मुझ में भी होना चाहिए, वहां तक ठीक है, लेकिन प्रभाव में नहीं आना किसी के भी। और क्रोध का अंश वंश, मोटे रूप में तो क्रोध पर हम सब विजयी हैं। वैसे तो बाबा के बच्चे बहुत मीठे होते हैं, बाबा मीठे मीठे बच्चे कहकर के हमें मीठा ही बनाते हैं, लेकिन क्रोध कब आता है आपसे पूछते हैं, सबने क्रोध को जीत लिया है? हाथ नहीं उठा रहे, एक एक ने हाथ उठाया। तो कोई परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि क्रोध को हमने कितना जीता। तो चलो हम दुनिया वालों जैसे गुस्सा नहीं करते कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे या हाथ पांव उठाना शुरू कर देंगे हम, है ना। हाँ, लेकिन सहन नहीं कर सकते, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो जितनी हमारी सहन शक्ति होनी चाहिए ना, जैसे कहते हैं 10 बार सहन कर लिया ना, कितनी बार करेंगे, आखिर सहन करने की भी कोई लिमिट तो होगी। तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, या किसी ने मेरी ग्लानी कर दी, या जो भी, मतलब हम देखते हैं ऐसी कोई लोग हमारे प्रति कर देते हैं जो भी व्यवहार करने होते हैं, तो फिर हम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते, तो हम अपनी नाराजगी दिखाते, मुख से नहीं बोलते लेकिन थोड़ी नाराजगी अपने हाव भाव व्यवहार से हम दिखाते हैं कि ये हमें पसंद नहीं है। तो हम सोचते हैं इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक सूक्ष्म घृणा भाव। और अगर वो ज्ञानी व्यक्ति हैं तो थोड़ा ज्यादा होता है कि ज्ञानी होकर के भी ऐसा करते हैं, अज्ञानियों का तो हम थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते हैं क्योंकि उनके प्रति हमारा सेवा भाव होता है कि इनकी तो हमें सेवा करनी है, तो ये जैसे भी करते हैं हमें शुभ भावना ही रखनी है इनके प्रति, तभी तो हम इनको बाबा के नजदीक ला पाएंगे। तो काफी हद तक हम अज्ञानियों का सहन कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के संगठन में जब आते हैं और अगर कोई इस तरह का व्यवहार कर देता है हमारे साथ, तो फिर थोड़े व्यर्थ संकल्प उन आत्माओं के प्रति हमारे चलते हैं। तो उस परिस्थिति में भी ना चले, तब कहेंगे हमने क्रोध पर विजय पाई। कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई गलती करता है या कोई मेरा अपमान कर देता है, कोई मेरी ग्लानी कर देता है, यही स्थितियां होती हैं ज्यादातर जो गुस्से को पैदा करती हैं। उस स्थिति में भी उस आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना शुभकामना रहे। वो बाबा ने हमें समझाया हिसाब किताब है, ब्राह्मणों के हिसाब किताब आपस में ही चुकतू होने हैं और 63 जन्मों के हैं, लंबे हिसाब किताब हैं, तो ठीक है जो भी व्यवहार हुआ वो कोई पूर्व जन्म का भी हिसाब किताब होगा, तो हमारा कर्ज उतर गया और ही खुश होना चाहिए, किसी की कर्ज चुकतू होती है तो खुशी होती है कि हमारा कर्ज हम हल्के हो गए, तो इसने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। अगर हम भी उस फीलिंग में आ जाएंगे, अगर फीलिंग में आ गए, उस बात के दुख को ले लिया, कहा कुछ नहीं लेकिन अगर उसके दुख को भी ले लिया, फिर नेगेटिव फीलिंग्स हो गई उस आत्मा के प्रति, इसका मतलब हमने उसको 100 गुना और बढ़ा लिया। तो ये सूक्ष्म हिसाब किताब भी हमें समझने की जरूरत है। शुभ भावना रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, और अगर फीलिंग्स में आ गए, बाबा इसलिए कहता है फीलिंग में आ गए तो फिर वो बढ़ जाता है। ऐसे ही लोभ का जो सूक्ष्म रूप हमारे सामने आता है, बाबा के बच्चे जो हैं वो विनाशी धन कमाने के पीछे तो बहुत नहीं भागते हैं क्योंकि अविनाशी कमाई का महत्व समझ में आ गया, तो हमें पता है कि हमें इस कमाई में टाइम ज्यादा देना है, ये पुरुषार्थ, ये कमाई ही हमारे साथ जाने वाली है। तो धन अगर हमारे पास पर्याप्त है, हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी हो रही हैं, तो हम ज्यादा धन के पीछे नहीं जाते, सेवा के लिए भी जितना आवश्यक है उतना हम बाबा की सेवा में भी लगा रहे हैं, तो हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में कैसे आता है लोभ, कि ये खाने पीने की जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें पसंद होता है खाना, ऐसा तो होना ही चाहिए। मतलब ये तो खाने में होना ही चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो खाना अंदर जाएगा नहीं। कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उसकी भी हमारी कोई पसंदगी है, उस अनुसार ही हमारे कपड़े होने चाहिए, हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। फिर उसके कारण अनावश्यक थोड़ा संग्रह करने लगते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं चाहिए हमको 2 जोड़ी जूते, लेकिन उसकी बजाय कितने जोड़ी हैं हमारे पास, कोई नए मॉडल का मोबाइल। हाँ, आवश्यकता वाला जितना फोन करने के हिसाब से तो मोबाइल हमारे पास है, पर बाजार में नए मॉडल का मोबाइल आ जाता है तो मेरी बुद्धि किसमें जाती है, इसमें ज्यादा सुविधाएं हैं। नए मॉडल की कार आती है तो मेरी बुद्धि किसमें जाती है, अब मेरी कार पुरानी हो गई, इसको बेच करके कौन सी कार लानी है। तो आवश्यकता तक ठीक है बाबा कहता है, लेकिन आवश्यकता अगर अंश लोक के अंश में चली जाती है, बेहद में चली जाती है, तो वो अंश वंश हो जाता है। तो अगर अच्छा कपड़ा मिलता है बाबा कहता है तो भी बहुत अच्छा, और चट्टियों वाला कपड़ा मिलता है तो भी बहुत अच्छा, 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी बहुत अच्छा, और सूखी रोटी और गुड़ मिलता है तो भी, हर स्थिति में हर हाल में राजी संतुष्ट रह पाए, क्योंकि अंतिम समय में यही पेपर आने वाले हमारे सामने, जो हमारी कमजोरी होगी वही हमारे सामने पेपर के रूप में आएगी। उसमें हम पास कब हो सकेंगे, जब पहले से हमें इसका अभ्यास होगा। तो ये अपनी चेकिंग हमें करनी है, सूक्ष्म चेकिंग, की अगर हम कहें चाय के बिना मेरा काम नहीं चलता है, और पता चलेगा उस समय चाय ही नहीं मिल रही है, तो बुद्धि सारी कहाँ लगी हुई है, चाय में। बाबा भूल करके कौन याद आएगा, तो वो नहीं याद आना चाहिए। तो चाय है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, माना किसी पर हम निर्भर नहीं है, कोई भी चीज का आधार नहीं है। और मोह हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास है उसके प्रति हमारे मन में जो भाव होता है कि अगर ये हमसे छूट जाए तो क्या होगा, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु है। लोभ है, चाहिए चाहिए, और मोह जो है मेरे पास उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। मेरापन जिसको कहते हैं ना, इसमें मेरापन हो गया तो फिर उसको कुछ भी नुकसान होगा तो हमें सहन नहीं होगा, दुख महसूस करेंगे। या कोई व्यक्ति है वो मेरा है, अगर उसको हम मेरा समझते हैं, उस पर हम अधिकार समझते हैं, और अगर उसको कोई दुख होगा, कोई ऐसा कष्ट होगा, तो उसका दुख कष्ट जैसे मेरा ही दुख कष्ट है, उसकी जैसी स्थिति होगी वैसी ही मेरी स्थिति भी बन जाएगी, उसकी जैसी फीलिंग्स हैं वैसी ही फीलिंग्स मुझे भी आने लगेंगी। समझ गए ना आप, रग जुटी हुई है, माना ट्रांसफर हो जाता है, मेरी स्थिति पर उसकी स्थिति का असर जल्दी होता है। जैसे होता है ना घर में, अगर बच्चे बीमार हो गए, माँ को मोह है बच्चों से, तो कैसी हालत हो जाती है, बच्चे की बीमारी खुद को भी बीमार कर देती है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसने अपना एक पुराना मकान, मतलब बेचने के उसमें था, पूरा बिका है या नहीं बिका उसको मालूम नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे को वो जिम्मेवारी दे रखी थी। तो उसकी दुकान थी, वो दुकान में था, और किसी ने आके उसको खबर दी कि तुम्हारा वो जो मकान है उसको आग लग गई है। तो बेचारा घबरा गया, उसने कहा अरे वो तो मैं बेच रहा हूँ, आग लग गई। तो पहुंचा वहां पर कि कैसे क्या किया जा सकता है देखने के लिए, तो देखा कि वो तो काफी जल चुका है, तो बड़ा दुखी हुआ, मकान जलता हुआ देखकर, इतना नुकसान हो गया प्रॉपर्टी का, संपत्ति का। तो इतने में ही किसी ने आकर उसको कहा कि तुम्हारा जो बेटा है, बेटे के ऊपर जिसके ऊपर जिम्मेवारी दे रखी थी उसने, तुम्हारे बेटे ने कल इसका पूरा हिसाब किताब कर दिया, इसकी रजिस्ट्री हो गई, इसका पूरा लेन देन हो चुका है, तो अब ये तुम्हारा नहीं रहा, तो तुम दुखी मत हो, तो उसको लगा कि तुम पक्की बात कह रहे हो, तो उसने कहा तुम अपने बेटे से पूछ सकते हो। तो उसने पूछा अपने बेटे से, कंफर्म किया, तो बेटे ने कहा हाँ पिताजी ये मकान बिक चुका है, अब ये हमारा नहीं है, कल मैंने इसका पूरा हिसाब किताब कर दिया है। तो जैसे ही उसने सुना कि अब ये मेरा नहीं है, ये बिक चुका है, उसको तसल्ली हो गई, जो दुख हो रहा था वो दुख उसी समय खत्म हो गया। तो कब तक दुख हो रहा था? जब तक मेरापन था उसके अंदर। जैसे ही मेरापन खत्म हुआ, दुनिया में भी हम देखते हैं कितने लोग की मृत्यु का समाचार हम सुनते होंगे, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा कोई मरा हुआ है, ज्यादा दुख नहीं होता हमको क्योंकि उसका हमारे से कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कोई मेरे परिवार का, जिसका मेरे साथ समीप संबंध है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख होता है क्योंकि उसमें हमारा मेरापन होता है। तो यहां बाबा कहता है कि मेरे को तेरे में बदल दो। मोह तब समाप्त होता है जब पूरी तरह से हम ट्रस्टी बन जाते हैं। अभी आपके लिए सौगात का कार्यक्रम है, क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, बस मैं 2 मिनट में पूरा कर देती हूँ उसको। और लास्ट है अहंकार। तो अहंकार का जो मोटा रूप है वो तो हम सब देहाभिमान पर विजय पा लेते हैं। देहाभिमान माना मैं फलाना हूँ, ये हमें कॉन्शियसनेस नहीं होती ब्राह्मण बनने के बाद। लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप में कई बातों में, क्योंकि हम ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा बाबा कहता है कई बार ज्ञान होने का अभिमान, मैं राइट हूं। ओम शांति।